गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
परमेश्वर ने सुख संवेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं और हर पैड़ी हर हेथ ना जाना वहां जा तेग चलावे और काटे शीश नहीं दल करुणा ये जग में साध को आवे हैं और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कहते हर पैड़ी, हर की पैड़ी कहे भगवान के प्रति कोई दया नहीं और आपस में कतलेआम कर रहे हैं और काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साधु कवावे महात्मा। और कहते इनके तो दर्शन भी कोई करने जाए ना उसने भी नरक पठावे। हमने आसपास देखा गांव में, हमारे गांव में नाथों का डेरा था एक, अब भी है, तो जो भी उनके संपर्क मानता उन्हें पहले सुल्फा पहन सिखाते, उसको एक चलम सी राख्या दे मिट्टी की इतनी सुल्फा वर्गर टर्न कर देते, फिर वो चोरी करता क्योंकि आदि बन जाता घर क्या तो लुकमा लाता दाने लाता, उन्हें सुल्फा पीना डेली तो नो बिगाड़ दिए। कहते इनके दर्शन जाओ उन भी नरक भेज दें, ये कहे कि भक्ति कराओगे करेंगे। अब धर्मदास इन बातों ने सुन के बहुत प्रभावित हुआ। पुणात्माओं बहुत कुछ परमात्मा ने उसको समझाया, उस प्यारी आत्मा ने बड़ा ध्यान से सुना, लेकिन ये मन ये पुराना रंग जल्दी से हटता नहीं। काफी देर सुनते सुनाते फिर कोई ऐसी बात कह दी धर्मदास जी ने कि महात्मा जी आप तो बहुत कड़वी कड़वी बातें कह रहे हो, क्या इनकी पूजा करने वाले निकम्मे होते हैं। परमात्मा ने कहा मैं नहीं कह रहा, आपकी गीता बोल रही है। कहने का भाव यह है कि धर्मदास जी ने फिर से परमात्मा की बातों में अरुचि व्यक्त कर दी। अरुचि व्यक्त की तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी फिर अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हुए तो वो फिर रोने लग गया, फिर रोने लग गया ही भगवान मेरे पर गलती बन गई, इतना अच्छा ज्ञान दिया और सारे सत प्रमाण दिए, अब क्योंकि हम श्रद्धालु इतने हैं हम इन भगवानों की जो पूजा करते थे इनके विषय में कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते कुछ दिन तो। लेकिन पुण्यात्माओं अगर कोई दंत कथा सुनाता हो अपनी महिमा व्यर्थ बनाता हो तो वो नहीं सुननी चाहिए। सदग्रंथों में लिखे प्रमाणों को नहीं मानता है तो वो आदमी ठीक नहीं। उसके विषय में परमेश्वर कहते हैं जानबूझ साची तजय करे झूठते ने और ताकि संगत है प्रभु सपने में बिना दे। ये से उसकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। अब धर्मदास के सामने देरा छा गया और पुण्यात्मा जिस परमात्मा को सर्व सुखदायी बताया जाता है वो परमात्मा जहां प्रकट हो जाता है 100 किलोमीटर में कहो तो कम से कम शांति हो जाती है, और वो तो बैठे उसके कति साथ में, जैसे किसी का कोई हाथ पर गर्म पानी या चाय गिर गई हो, उसमें कितनी पीड़ा होती है, और उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा रख दिया जाए, कैसा महसूस करता है, जैसे उस पर कुछ भी नहीं है, शांत हो जाता है। ऐसी दशा है भगवान जब उसके पास थे तो उनके उसको इतनी शांति थी, परमात्मा के दूर होते ही उसके अंदर वही फिर पीड़ाएं, जैसे रह रह तरह गई दूर दूर की बातें, वो नूर फलाना नूर नू कर दू ऐसे कर दू, ये आग है सबके अंदर, जल रहा है प्राणी अपनी अपनी आग में। तो वो महसूस उसको जो आनंद हो रहा था वो खत्म हो गया, और जो ज्ञान उसे मिला वो प्रमाणित, और फिर भी अपनी किस्मत को रो रहा कि मैं किस कैसा दुष्ट हूं, मैंने भगवान खो दिया। अब फिर रोने लग गया, अब त्याग दिया, वापस चल पड़ा अपने घर की तरफ, और क्या कहता है परमात्मा की वाणी में लिखा है, तावा रोवत धर्म निनागर, कहां गए मेरे सुख के सागर, अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुटगी खेती, कलप करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। अब रो रहा है, अन्यो कहे भगवान, बेग मिलो करूं अपघाता, अब ना जीवूं सुनो विधाता। अब धर्मदास जी नो देखे कि भगवान कहीं मेरे पीछे तो नहीं है, ऊपर तो आकाश में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहते हैं, कलप करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे, चारों तरफ देख रहा है, दसों दिशा को, ऊपर को नीचे को, और कहता है, बेग में लो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता, हे परमात्मा जल्दी दर्शन दे दो, अब मैं जीऊंगा नहीं मैं आत्महत्या करूंगा। रोता हुआ घर पे आ गया, उसकी पत्नी ने सोचा, भगत क्यों रो रहा है, क्या बात होगी इसको, अब बोल नहीं पा रहा, इतना बुरी तरह रो रहा, कहां से, मथुरा से रोने लगा था, बांधोगढ़ पहुंच गया एमपी में, 800 किलोमीटर, दो दिन तीन दिन जाने जाने में लगे होंगे उसको, पैदल चलते थे पहले, कोई सवारी नहीं होती थी ऐसी, और श्रद्धालु थे, पैदल चलते थे। उसकी पत्नी का नाम आमनी देवी था, बड़ी धर्मात्मा थी, लेकिन कभी कभी वो भी भगत के साथ कुछ दान धर्म के बारे में कुछ कंजूसी करती थी। तो उसने सोचा कि भगत क्यों रो रहा है, वापस कैसे आ गया, इसका तो एक महीने का टूर प्रोग्राम था, आ गए सातवें दिन। उसने सोचा बात क्या है, और उसके मुंह की तरफ देख रही है, और वो रो ऐसे बुरी तरह रहा जैसे किसी बालक के माँ बाप दोनों मर जाए, वो बालक रोया करे, इतना बुरी तरह जमीन पर ऐसे मुंह के बल पड़ गिर के और बुरी तरह रो रहा है। उसने सोचा इसके क्या हो गया, इतना जल्दी कैसे आ गया। आमनी ने सोचा कि हो सकता है इसके किसी ने ठग ने पैसे लूट लिए हो, और मैं कंजूस हूं, कई बार इसको कह देती थी जब यो धर्म भंडारे करता था, खुले हाथ में टोक दिया करती कि बच्चे के खाओगे, गणा दान ना करा करे। तो उसने सोचा कि अब ये न्यू ना रो रहा हो कि मैं इसका पैसा किसी ने ठग लिया चुरा लिया जो यात्रा के लिए ले गया था, और अब ये सोच रहा होगा कि मैं दोबारा जान की सोचूंगा, पैसे की कहूंगा तो यह मुंह चढ़ावेगी। तो उसने सोचा कि दे जिस कारण से रो रहा हो, अब वो धीरे धीरे कहती है, सेठ जी क्यों रो रहे हो, किसी ने पैसे निकाल लिए होंगे ना, तुम्हारे तो भगवान ने बहुत दे रखा है, और कितने पैसे ले जाओ आप, और ले जाओ आप, पूरा करके आओ अपना कार्य है। अब वो एक घंटा दो घंटा खूब रो लिया, धीरे धीरे सबकता हुआ, रोता रोता कहता कि आमनी यदि मेरा यू धन खो गया होता, भौतिक धन कोई चुरा लेता, मैं नहीं रोता, फिर ले जाता, लेकिन मेरा वो धन गुम हो गया जो मुझे अब शायद मिले नहीं, और वो मिले नहीं, मैं जी नहीं सकता, आमनी ने पूछा कि ऐसा कौन सा धन था तेरा। अब ये बात सुनकर बैकग्राउंड की तरफ देखकर वो फिर बुरी तरह रोने लग गया। रोते रोते काफी देर के बाद जब उस थोड़ा सा स्वाभाविक सा हुआ, शांत हुआ, सारी कथा बताने लगा। जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था सारी ज्ञान सुनाया, और सृष्टि रचना सुनाई थी परमात्मा कबीर जी ने। अब इतना समय नहीं रहा आज के सत्संग में, नहीं वो भी सुनाता, कल सुनाएंगे। तो वो उसने सारी सुनाई और सब अपने साथ घटना बताई कि ऐसे ऐसे मैंने रोटी बनाई, उसमें चींटियां जड़ गई थी और वो चींटी सारी जीवित कर दी, मेरा पाप काट दिया। अब आमनी कहने लगी, इतना बढ़िया ज्ञान और खुद भगवान देने आ रहे थे, आप तो व्यापारी हो, आप तो बिजनेसमैन थे, यो सौदा चूक कैसे गए। अब धर्मदास कहता, जिंदगी में पहली बार मैं आ रहा हूं सौदे में, आज तक हार का मुनि देखा था, अब के मैं चूक गया अपना सौदा, और ये घाटा मुझे शायद इस जीवन में पूरा नहीं होगा और मैं जी नहीं सकता। जो साधनाएं हम करते थे वो एक अन्य की नहीं, आगे का रास्ता कति नहीं, घोर अंधेरा हो गया मेरे सामने, जीऊं कैसे भगवती। आमनी कहने लगी, आपने तो गलती कर दी। इबन महाविष्णु महेश गेला कुंसी अपनी रिश्तेदारी थी और ये कुंसी अपना रोज मिला करते थे, हमने सुनी सुनाई बातों पर उन पास रही थे, और इतना बढ़िया ज्ञान सारे प्रमाण आपको बताएंगे, आपने चरण पकड़ने चाहिए थे। कहने लगा, इसी भूल को तो रो रहा हूं, जैब कह भगवान आगे, अब कह नहीं छोड़ दूंगा चरण उनके। ऐसे बीत गया, 6 महीने बीत गए उनको। धर्मदास जी ना कुछ खावे, मुश्किल से एक आध फुलका रोज, मुश्किल से उसकी पत्नी कह सुनकर खिलाओ उसको, और वो ना काम काज में रुचि, वो भक्ति करा करता हुआ कति वत करने की कोई ना थी। सुबह बैठ जा दरवाजे तो बाहर द्वार के ऊपर गेट पे है, अन्नू देखे दूर ताई, जैसे बिलड़ी ने श्री राम की प्रतीक्षा की थी। अब जैसे उसको कहीं दूर से कोई आता दिखाई देता, चल पड़ता उसकी तरफ कि शायद महात्मा आ गए। अरे एक बार पुणात्मा, जिसकी चाह आपको हो जाती है, आम व्यक्ति भी वो शायद दिखने लग जाता है उसको, वहां तक जाता है कि ना यू तक हो नहीं, वो नहीं है। फिर पता लगा किसी से कि एक महात्मा बैठे है जंगल में, गांव नगर के बहुत से लोग उसके पास जा रहे हैं दर्शनार्थ। भगत जी भी पहुंच गए, धर्मदास जी। अब देखा कि भी हो सकता महात्मा वही हो सकते हैं, लेकिन इनका ज्ञान से परीक्षण होगा। धर्मदास जी ने प्रश्न किया उस साधु से, परीक्षा करने के लिए जब महाराज जी होंगे तब वो बात मैं प्रश्न करूंगा, टू दी पॉइंट जवाब देंगे। उसने प्रश्न किया, महाराज जी मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। धर्मदास ने कहा, वो साधु महात्मा बोला, करो बच्चा, के ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? वो साधु कहता, अरे कैसी बात करता है, इनके कोई माता पिता नहीं, अधर्व अमर सर्वेश्वर महेश्वर। और जान गए यू ठीक हो, मन मन महीने गए तो रोंग नंबर उठ का आ गया। ऐसे 6 महीने बीत गए। फिर परमात्मा ने उसकी पत्नी में प्रेरणा की। उसकी पत्नी ने कहा कि मार भगत, आपका तो वेट भी आधा रह गया, अरे ऐसे तो आप मर जाओगे। भगवान ने जब बिछड़े आपसे कुछ तो कहा होगा, भी कैसे मिले वो? उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि जहां धार्मिक भंडारे होते हैं, यज्ञ होते हैं, साधना करते हैं, जो भगत इकट्ठे होते हैं तो कोई भंडारा करता है, तो मैं अवश्य जाता हूं और उनको ज्ञान चर्चा करते हैं परमात्मा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में पढ़ा कि वो परमात्मा हमारे यज्ञों में, धार्मिक यज्ञों में बिजली अत्यधिक गतिशील पदार्थ के समान आकर प्राप्त होते हैं, गुप्त रूप में आकर बैठ जाते हैं वहां पर। और वही परमात्मा ने कहा कि ऐसे धर्म भंडारे होते हैं, धार्मिक यज्ञ होती है, वहां से जाता हूं क्योंकि वहां मेला भरता है, भक्तों को बैठा के समझाते हैं, चर्चा करते हैं गुप्त रूप में। तो आमनी ने कहा कि आप भंडारा कर दो। धर्मदास ने कहा एक दिन में क्या हुए हैं, एक दिन में तो पता भी ना चला किसी ने। आमनी बोली तू कर ले जितने दिन का करना हो, कि तीन दिन का करना पड़ेगा, अब तीन दिन का कर ले। उसने तीन दिन का भंडारा, धर्म भंडारा दिन निश्चित कर दिया। आसपास सब चिट्ठियां भिजवा दी कि दूर तक। अब पहले दिन सब भोजन करके साधु संत महात्मा चले गए, वो तो नहीं आए, देखता रहा। उसकी पत्नी ने पूछा कि महाराज जी आए क्या, महाराज जी नहीं आज तो नहीं आए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन आफ्टरनून हो गया, भंडारा यानी भोजन चल रहा है, साधु संत खाकर जा रहे हैं। अब धर्मदास ने फाइनल फैसला कर लिया, क्योंकि वो तो आत्मा के पुकार सुनते हैं, कि यदि आज आप नहीं आए कल आपका दास नहीं रहेगा संसार में। अब जिया नहीं जा मेरे थे, आज तक की आस थी शायद आज आ जाएंगे। अंतर वो तो कहते हैं चिट्टी पायल बाजे पैर साहेब सुनता है सब लहर, अंतर्यामी सारी जानते हैं। उन्हें देख लिया कि आज भगत मरेगा, अब नहीं जीवेगा, क्योंकि फाइनल फैसला था उसका कि ये भी भंडारा पूरा हुआ और मैं आत्मघात करा। तो फिर कहते हैं वेग मिलो करूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। उसी समय दब रहे ना 10-20 भगत 50-60 भोजन खा रहे थे महात्मा, ये उसे महात्मा जी से बताए थे आप ताई। तो उसी समय एक कदम का पेड़ था लगभग 200 फुट की दूरी पर जहां भंडारा चल रहा था, वहां आके उसी जिंदे वाले महात्मा के रूप में वहां पर बैठ गया। आके धर्मदास की वैसे वो देख तो रहा था ऐसे ऐसे पल पल में, जब नंग आ गई अकवो बैठे महाराज जी थे नंगे पैरा नो दौड़ के नो देखा जानते कति नो वे के चरणा नो सीने लाग गए न चपट गए, जो कर बालक अपने मात पिता के चिपक जाता है और नो देखे नो कहे भगवान इब का छोड़ के ना जाइयो, हे परमात्मा अब का जो कहोगे सारी सुनूंगा। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास इन पहले फारक कर नकलिया ने, फिर बतलावांगे आपस में। अकना जी इब के ना जाइए, अक नहीं बच्चा नहीं जाऊंगा, विश्वास कर मेरा। अब वो एक कदम एक बार दन्यू देखे, फिर उन्हें तो डिगाने थे, वो फटाफट करके फारे गए और परमात्मा को कहा आपके दास की कुटिया आ जाओ यहां पर थोड़ी देर, अंदर बतलावांगे। अंदर ले गया भगवान को, जैसा भी बैठने को साधन दिया, अपनी पत्नी से बुलाया कि आजा भाग जा भाग गया आमनी, मेरा धन पा गया, मेरा धन पा गया। दोनों एक एक पैर पकड़ कर बैठ गए। तब आमनी ने कहा कि भगवान आपका बच्चा ये तो बहुत नर्म आत्मा का है, इसको तो मैं सांत्वना देती रही ना पहले मर लेता, ये भगवान आप तो अंतर्यामी हो, इतना दुखी नहीं करना चाहिए था अपने अपने बच्चे को। तब परमात्मा ने कहा कि आमनी यो काल का दूत हो रहा था, ये जिसको मैं दो बार मिला इसने सारी बात मानी, फिर किता न किता काल फिर इसका आंठ लगा दिया था, मैं इसके साथ था, इसको मरण नहीं देता बेटा, ये तो मर लेता पहले ही, इसका बड़ का डैमन है, इसका लोहा गर्म किया है, अब लोहा गर्म होए बिना चोट मारे जाओ तो उसका कोई फायदा नहीं, अब इसका अंत एक नसाफ हो लिया, आज बेटी जो मैं कहूंगा सारी मानेगा और ये सत्य इसके हृदय में उतरेगी, इसलिए थोड़ी सी देर करी थी। तो पुण्यात्माओं ये वो समर्थ है, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। फिर सारी कथा सुनाई, दोबारा से कई दिन रुके, उनको खूब ज्ञान समझाया, दोनों ने उपदेश लिया, परमात्मा ने तो गवाह बनाना था उनको, धर्मदास की आत्मा को। परमात्मा तो चले गए, उस चले गए भी मैं जाता हूं फिर आऊंगा। कुछ दिन के बाद एकदम धर्मदास जी को दर्शन दे रहे ओनली, और कहा धर्मदास चल तुझे मैं अपना सतलोक दिखाता हूं। पहले धर्मदास ने प्रार्थना की थी पहले कई बार, ले चल आज तुझे अपना स्थान दिखाता हूं। सतलोक लेके गए धर्मदास को, आत्म शरीर वहीं पड़ा है, अचेत पड़ा है, 3 दिन हो गए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, गांव के इकट्ठे हो गए, नगर के लोग आने लग गए। क्या हो गया कि पता नहीं क्या बीमारी होगी, बेहोश पड़ा है, कोमा में चला गया। तीसरे दिन परमात्मा ने सब कुछ ऊपर दिखाया, सारा सतलोक दिखाया, वहां की सतीची दिखाई, वहां की जो जन जो रहते हैं हंस लोग, वहां की दुनिया दिखाई सतलोक की, कि यहां कभी बुढ़ापा नहीं आता, यहां कोई दुख नहीं होता, यहां मृत्यु नहीं होती, तुम यहां रहते थे और अपनी गलती से तुम चले गए। अब धर्मदास कहता है, भगवान मुझे यही रख लो, अब वापस ना भेजो प्रभु, मुझे यही रख लो, मत भेजो महाराज, काल की नगरी है मुहे, राख लियो महाराज, काल की नगरी है मुहे, मत भेजो महाराज, हमसे बिगड़ी है। वाजा के पता चलता है कि सचमुच हमने जुल्म किया, यहां से गए किस कारण से गए। रो है, बहुत बुरा हाल कर दिया भगवान, वापस ना भेज दो तो बहुत बुंडी स्थान है। तो परमात्मा ने कहा, तो जा बेटा, यहां ऐसे नहीं आ जाता, न तो मैं सारे ले आऊंगा एक बार, तुम अपनी मर्जी से गए हो, अपनी इच्छा से वापस आओगे और इतने ही धनी बनकर आओगे जितने धनी यहां से बनकर गए थे। जितने धनी तुम यहां थे भक्ति के शक्ति, इतनी नीचे इकट्ठी करनी पड़ेगी, उसका मैं एक मंत्र दूंगा, तू चल वहां पर, और मंत्र दूंगा तुझे सतनाम, उसका सिमरन करना, उसके भक्ति के धन से तुम वापस आओगे, ऐसे नहीं बेटा बात बनेगी। तीसरे दिन जब वापस आत्मा आ छोड़ दी तो वो जा गया। तब उसको पता चला कि ये भगवान तो वहां काशी में रहता हूं, सतलोक से जाकर पता लग गया। वहां से चल पड़ा पैदल, बनारस में पहुंचा, रामानंद जी के पास पहुंचा, वहां से पता चला कि कबीर मेरा शिष्य है लेकिन मेरा गुरु भी है। तब मालिक से वहां मिले, फिर कहा कि हे भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी, परमात्मा दीक्षा दो अब दोबारा। नए सिरे तो मालिक ने उपदेश दिया, सतनाम दिया, उसकी मोक्ष किया, सारनाम दिया और उसका कल्याण किया। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, सर्वे उत्पादक प्रभु, ये परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, यही हमारे मालिक हैं। हम अपनी गलती के कारण हम यहां काल के जाल में फंस गए और हम ऐसे लोक में पहुंच गए हैं कि यहां जीव सुखी नहीं हो सकता, यहां सुख नाम की चीज नहीं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, कबीर देव जी, कबीर साहब जी, जो बनारस में काशी में एक जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष तक इस धरातल पर रहे, एक जनसाधारण की लीला करते हैं, ये परमात्मा तीन स्थिति में सर्व ब्रह्मांडों की स्थिति को संभालते हैं। जैसे परमेश्वर का एक बहुत तेजो में स्वरूप है, वो सतलोक के अंदर विराजमान है और बहुत बड़ा गुमज है, बहुत सुंदर, एक जैसे मंदिर नुमा एक ऊपर परमात्मा का स्थान है, उसके बीच में परमात्मा का सिंहासन है, तख्त है, और वहां परमेश्वर कबीर देव जी जो हमारे सदृश हैं, मनुष्य सदृश है उनका शरीर, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमेश्वर के एक रोमकूप की रोशनी से फीकी रहती है, इतना तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का। और फिर जब वो परमात्मा हमारे को यहां सद्बुद्धि देने आते हैं, यथार्थ ज्ञान बताने आते हैं, तब अपना अन्य रूप धारण करते हैं, उस रूप में तो वहीं रहते हैं, एक अन्य रूप धारण करते हैं हल्के तेज पुंज का। यदि वह परमात्मा उसी तेजो में शरीर युक्त यहां आ जावे तो हमारी आंखें बंद हो जावे, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। ठीक इसी प्रकार हमारी यह चरम दृष्टि परमात्मा के उस नूरी शरीर के प्रकाश को, उस नूर को नहीं देख सकती, सहन नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा हल्के तेज पुंज का अपने शरीर को सरल करता हुआ, हल्का करता हुआ, और यहां आते हैं। और यहां आने की उनकी दो स्थिति है, एक तो एक युग में वो पूरा जीवन जीते हैं, जैसे एक जन साधारण का जन्म होता है, जैसे एक बच्चा उत्पन्न होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर अपने रोजगार में लग जाता है, एक गृहस्थी चलाता है, ऐसे फिर वो चला जाता है, वृद्ध होता है। एक ऐसी भूमिका प्रत्येक युग में परमात्मा करते हैं, वो जन्म नहीं लेते क्योंकि वो भगवान है, वो एक शिशु रूप धारण करके छोटे बालक का, और तालाब के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। इसलिए परमात्मा को नारायण कहा गया है, नारायण माने जल के ऊपर विराजमान होने वाला। तो वो परमात्मा एक लीला करते हैं, वहां से पूर्व के जो संस्कारी हंस होते हैं, बहुत अच्छी आत्मा होती है, उनको वो प्राप्त होते हैं, और फिर लीला में तरीके से वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। वो कोई भी जलपान नहीं करते, फिर कुंवारी गायें दूध देती है परमात्मा के आशीर्वाद से, कुंवारी गायों के दूध से उस बालक रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला होती है। फिर वो बड़े होते हैं तो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। ये परमात्मा की दूसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति अर्थात यहां आने वाली दूसरी स्थिति, वो कभी भी किसी समय प्रकट हो जाते हैं। जैसे एक मेहमान आता है, अतिथि आता है, अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, कभी भी आ जावे। तो कबीर परमेश्वर, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, कभी भी कहीं पर भी एक साधु रूप बना कर कुछ दिन कहीं रह करके कुछ पुण्यात्माओं का उद्धार कर देते हैं और अच्छी आत्मा को मिलते हैं। ये उस परमात्मा की तीसरी स्थिति है, अतिथि रूप माने की। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में दोनों स्थिति बताई है, अग्ने तनुरसी, अग्ने माने परमेश्वर, परमेश्वर का तेजोमय शरीर है, इसलिए परमात्मा को अग्ने नाम से उपमा दी गई है। अग्ने माने है तेजोमय स्वरूप, तेजोमय परमेश्वर, अग्ने तनुरसी है परमेश्वर, आपका शरीर है, आप सह शरीर हैं, आपका बहुत सुंदर शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस परमेश्वर का, विष्णुवे माने सब का धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, विष्णुवे माने सब का धारण पोषण करने के लिए, अमर पुरुष का सोमस्य, अमर पुरुष का शरीर है, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तनुवसी। तो उस परमात्मा का सबका धारण पोषण करने के लिए भी शरीर है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की स्थिति बताई है कि इस संसार को ऐसा जानो जैसे उल्टा लटका हुआ वृक्ष हो, जिसकी जड़ ऊपर न हो और तीनों शाखा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी ये शाखा नीचे को हो। और इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, जो उसके सभी विभाग बताता है वो तत्वदर्शी संत है। उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान को काटकर अर्थात इस तत्व ज्ञान को समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में तीन पुरुष बताए हैं, तीन प्रभु, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। सर पुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, सर ब्रह्म भी कहते हैं, सर पुरुष भी कहते हैं। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन इन दोनों के शरीर नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सबके वो सभी नाशवान है, केवल जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो कुत्ते गधे की भी नहीं मरती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत है, यह लोक चरम आविष्य विभर्ति अवे ईश्वर है। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और ही है जिसको परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अवे ईश्वर अविनाशी परमात्मा। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके धारण पोषण कौन करता है? जैसे मूल से जड़ से, जड़ से पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है, जड़ पूरे वृक्ष की पोषण करता है, पूरे वृक्ष का पोषण करता है जड़। अब जड़ रूपी भगवान वो परम दिव्य पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है, तो वो कबीर देव है। ये वो कबीर देव है जो बनारस में काशी में आए थे और दानक की भूमिका किया करते थे। पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथ जो है, जैसे पवित्र विचारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, इन सदग्रंथों को हम यथार्थ ज्ञान युक्त मान रहे हैं और हैं भी न्यों के न्यों, और जो इनके अंदर लिखा है वो सत्य है। तो हम परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथों को आधार बनाएंगे, जिनको पवित्र हिंदू धर्म पहले से ही सत्य मानता है, उस पर पूर्ण रूप से आश्रित है। तो उन्हीं सदग्रंथों से हम भगवान पहचानेंगे, उनमें क्या लिखा है और कैसी महिमा है परमात्मा की, कैसी लीला करते हैं भगवान, तो फिर परमात्मा के पहचानने में हमें कोई भूल नहीं लगेगी। अभी तक हमें भूल लगी हुई थी, हमें कोई भी बता दे ऐसा है भगवान हम मान लेते थे, ऐसा है भगवान हम वो भी मान लेते थे, ब्रह्मा है भगवान हम उसको भी मान लेते थे, विष्णु है भगवान हम उसको भी मान लेते थे, शंकर है परम शक्ति हम उसको भी मान लेते थे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। अब जैसे ये पंथ चल रहे हैं, कुछ ये कहते हैं सतलोक में सचखंड में चलो और वहां परमात्मा निराकार है, सतपुरुष है ही नहीं वहां पर, और आत्मा ऐसे मिल जाएगी वहां जैसे बूंद समुद्र में। बताओ अक्ल मारी जा रही, समुद्र में कोई कहे चलो डूबन चलेंगे, कितने तैयार होंगे डूबन खातरे? यहां वैसे हां भरे जाओ बेशक, पर डूबन का टाइम आओगे जब एक नाव डूबे उड़े सारे भाग जाएंगे छोड़ गए। तो यहां ये नकली पंथ चल रहे हैं, ये कहते हैं वहां भगवान है नहीं, निराकार ही प्रकाश ही प्रकाश है, तो वहां क्या करेंगे हम जाके, जो भगवान नहीं, हम तो परमात्मा को मिलने चले हैं, परमात्मा वहां है नहीं। अब जैसे कोई गाय की महिमा गाता है, गाय दूध देती है, बहुत अमृत सा दूध देती है, बड़ा लाभदायक पशु है, और सभी की इच्छा होती है अभी हम गाय लें, और फिर कहें गाय तो है ही नहीं, गाय तो निराकार है, या कोई ये थोड़ी वही कोई परमात्मा की इतनी महिमा बता रखी है वेदों में सदग्रंथों में, जिन महापुरुषों को आकर मिले हैं उन्होंने अपने आंखों देखा हाल भगवान का बता रखा, अब उनको हमने अनदेखा कर दिया, इन झूठों की बातों को स्वीकार कर लिया, ये नकली पंथ जो ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये सारे झूठ बोले कति 100 की 100, इनने किसी ने भगवान नहीं मिला, कख नहीं पता इनको, अगर परमात्मा मिला होता ये निराकार बताते, सदग्रंथ सत बतावे कि उस सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, आंखों देखा संत बताते हैं, दानक रूप रहा करतार, और हमारे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार, हमारे जैसा हमारा भगवान, हमारे हमारा उत्पत्ति करता। तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि पहले हम अपने जिन सदग्रंथों को सही मानते थे उन्हीं से परिचित हों, फिर दिखता कौन ही भगवान के पहचान की और मोक्ष की कोई समस्या खत्म, क्योंकि इतना सिंपल मार्ग है, जैसा मार्ग नहीं। इन काल के दूतों ने काल प्रेरणा से अपनी प्रभुता दिखाने के लिए हठ योग शुरू कर दिए, सिद्धियां प्राप्ति करने के लिए खड़े होकर तप, उल्टा होकर के तप और नरे अनुष्ठान करने लगे, सुहा सुहा करके। ये तो नाशकरण की भी ढूंढा करते थे, एक दूसरे पर प्रभु पकड़ने के लिए। किसी ने एक सिद्धि प्राप्त कर ली तो दूसरा ने सोचा तीन करूं मैं, और तब इससे मैं सुपीरियर कहलाऊं जनता में। परमात्मा कहते हैं इस हमारे नाम में 24 सिद्धि आ जाएंगी तुम्हारे को, लेकिन इन सिद्धियों का प्रयोग ना कर लेना, ये विष का काम करेंगी, अपने आप पड़ी रहे, क्योंकि सिद्धियां हमारा सहयोग देंगी और हम इसको प्रयोग करने लगे तो फिर हानि कर देंगे हमारे को। तो इसलिए ये सिद्धियों का प्रयोग करते थे। जैसे एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक अगस्त ऋषि थे, परमात्मा पाने के लिए घर त्याग कर जंगल में साधनाएं शुरू कर दी। अब इनकी बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं। बचपन जंगल में निकल गया, 30-40 वर्ष का हो गया, फिर भ्रमण शुरू कर दी, यानी पहले बैटरी चार्ज करता था, एक वर्ष में 6 महीने तपस्या साधना करता था, 6 महीने भ्रमण करता था गांव गांव नगर नगर में जाके। तो उसकी महिमा होगी, एक राजा की संतान नहीं थी, राजा ने उस पता लगा कि बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, जंगल में साधना करके आए हैं। तो राजा ने प्रार्थना करके अपने पास हफ्ते 10 दिन रखे, सेवा की, फिर प्रार्थना की कि हमारे संतान नहीं है। अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है, हो जाएगी संतान, हो जाएगी। अगस्त ऋषि चले गए, पीछे से राजा के घर कन्या ने जन्म लिया। अब वो घूमता घूमता 12 वर्ष के बाद फिर उसी रेंज में आ गया, 6 महीने साधना करता था, 6 महीने ऐसे जंगल में गांव गांव नगर नगर में घूमता था, तो 12 वर्ष के बाद उसी साइड का नंबर आ गया। राजा को पता चला कि वो महापुरुष आ रहे हैं, अगस्त ऋषि। राजा ने अपने नगर की सीमा पर से लेकर वहां तक फूल बिछा दिए और खूब जय जयकार करवा दी, सब खड़े कर दिए नागरिक आओ भगत के लिए, और साथ में अपनी कन्या को साथ लेकर गए। 12 वर्ष की कन्या पहले बहुत अच्छी तगड़ी हो जाती थी, तो वहां जाकर के कहा कि भगवान आपकी दया से मुझे एक पुत्री प्राप्त हुई है, आपके आशीर्वाद से मैं आपका आभारी हूं। अगस्त ऋषि बड़ा खुश हुआ और प्रार्थना की कि महाराज हमारे यहां कुछ दिन रुको। पहले तो कह रहा था कि नहीं नहीं, मैं एक दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुकता हूं। फिर उसने कहा, जाकर जब बताया कि ऐसे ऐसे आपकी कृपा से मैं पुत्री प्राप्त हुई, हम चाहते हैं आपकी कुछ सेवा करें और हमारा मन खुश होगा, तो उसने 2 दिन की हां भर ली और राजा ने अपनी कन्या की सेवा की से करा दी। बेटा तू इनकी दी हुई है और सेवा करो महाराज की। अब धीरे धीरे वो महाराज जुड़े 7 दिन डटिया, फिर कहने लगा कि मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। राजा से कहा अगस्त ऋषि ने, अब राजा ने कहा जी हम क्या दे सकते हैं आपको, सब कुछ आपका ही है, मांगने की आवश्यकता नहीं, आप आदेश करो कि ये कन्या मुझे दे दो मेरी सेवा के लिए। अब राजा को पता था नाट गया तो पता नहीं कि बद्दुआ दे दे कति नाश हो जाए मेरा, अपना छाती पर पत्थर धर के कि जो आपकी आ गया। हबले का लड़की ने जाता रहा, कर ले साधना इनकी। फिर उसको क्या हुआ, तपस्याएं करके उसने एक सिद्धि प्राप्त कर लिया। जीवन सारे जीवन में एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बोजुग जीवे, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई। अपने आत्माओं, अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया। अब फिर प्रार्थना की उससे अन्य ऋषियों ने देवताओं ने के भगवान यहां तो सब आओ भाव बिगड़ जाएगी, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा और आप दया करो हमारे ऊपर रहम करो। रहम कर दिया, उल्टा ही कुरला कर दिया, सातों समुद्र भर गए। अपने आत्माओं आज हम अध्यात्म ज्ञानहीन हो लिए कति, इन नकली ऋषि संतों महंतों के कारण ही न कह कहेगा पता नहीं, हमें नास्तिक का दूसरा रूप बना दिया कि भगवान ऐसा नहीं कर सकता, ये सब झूठ बोलने की बातें हैं। नहीं, अध्यात्म के अंदर बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है, ऐसा बिल्कुल संभव है, लेकिन ये हमने चाहिए नहीं थी, इनकी आवश्यकता नहीं थी, अज्ञानता के कारण ये किया। क्या कहते हैं परमात्मा, कहते हैं कि डिंब कर डूंगर चढ़े, लोग दिखावा करते हैं ये तपस्या करने वाले ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे जहां से दूर तो दिखे सब न महात्मा, वो बैठा और फिर आंख मीच कर बैठा रहा, फिर उसकी सेवा शुरू हो जा, लोग आन जान लग जा, उसकी महिमा हो जाए, वो महिमा की भूख है। परमात्मा कहते हैं कि डिंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे टीले पे पहाड़ पे पहाड़ पे, अंतर झीनी झूल जग जाने बंदगी करेंगे वो सूल बबूल। आम जनता तेने सोचा बड़ा महात्मा भाई कमाल कर रहा है, अगर छोड़ के देख परमात्मा के लिए कितना संघर्ष कर रहा है, तो कहते हैं ये तो बो है सूल बबूल, ये तो कांटे बो अपने आने वाले जीवन में, इसकी साधना ठीक नहीं। अब एक दो भक्त थे घर से चल पड़े परमात्मा पाने के लिए, उनको एक महात्मा मिल गए जिसका बहुत बोलबाला था, बड़े सिद्ध पुरुष कहा थे, दोनों ने वहां दीक्षा ले ली, घर त्याग कर चले गए, सन्यासी हो गए। कई वर्ष तक वो महात्मा के साथ रहे, गुरुजी के साथ आश्रम में। अब गुरुजी की मृत्यु के बाद वो दोनों निकल गए वहां से और अलग अलग दिशा में सिद्धि प्राप्ति के लिए चल पड़े, क्योंकि वो सिद्ध सिद्धि ही सिखाता था। जो उनमें से एक था उसको परमेश्वर कबीर देव जी का सत्संग मिल गया। जैसे आप जी को अभी बताया कि परमात्मा तीन स्थिति में अपने संसार के सभी कार्यों को संभालते हैं, एक में तो पूर्ण रूप ऊपर बैठे हैं सब ब्रह्मांडों का कंट्रोल करते हैं, अन्य रूप जैसे प्रत्येक युग में एक जीवन ऐसा करके जाते हैं, बच्चे के रूप में प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, वो सह शरीर आते हैं सह शरीर चली जाते हैं, 120 वर्ष रहे थे कलयुग में और सब अपना ज्ञान प्रचार करके अपनी अमृत वाणी लिपिबद्ध करवा के अपना ज्ञान सारा सुख संवेद दे करके चले गए थे, सह शरीर गए थे। और दूसरी स्थिति वो कहीं भी आकर प्रकट हो जाते हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, अन्य को दिखाई दे नहीं रहे थे, ओनली नानक साहिब जी को दिखाई दे रहे थे। और जो ही नानक साहिब जी ने बेई नदी में डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, वहीं से उनको अंतर ध्यान कर लिया। जनता ने सोचा डूब गए, सब जाल जूट डाले, दूर दूर तक खोज की कुछ नहीं मिला, सतलोक में ले गए फिर वापस छोड़े, तीसरे दिन वहीं खड़े मिले। तो ऐसे परमात्मा इन पुण्यात्माओं को मिलते हैं, फिर वो अपने ऐसे आकर के वो परमात्मा कुछ लीला करते हैं। इसी प्रकार वो कहीं प्रगट होकर के कुछ दिन कुछ क्षेत्र में रह जाते हैं, कोई उनका गांव नाम पूछते हैं तो वो गोलमोल कर जाते हैं, संतों के गांव नहीं पूछा करते, तो जनता भी नहीं ज्यादा खोजबीन करा करती, ना कोई मीडिया ऐसे कोई साधन थे जैसे आजकल टेलीफोन है, नाम बता दे जब बगाम वहां पूछने करके भाई यहां का कोई आदमी है, तो उस समय ऐसा नहीं था। तो परमात्मा ऐसे रहते हैं, किसी एक क्षेत्र में कुछ दिन रह गए फिर अचानक चले गए, साधु रहते थे अचानक चले गए वापस नहीं आए, ये वो परमात्मा की लीला थी। तो कबीर परमेश्वर जी ऐसे रह रहे थे वहां, वो उन दोनों गुरु भाई जो थे उस सिद्ध के, उनमें से एक कोस परमात्मा कबीर देव जी का टच हो गया, सत्संग हो गया, मिल गया उसको। कई दिन लगातार सत्संग सुना, उसका तो जीवन बदल गया, जिन सिद्धियों को वो प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था वो खत्म हुई, परमात्मा पाने की उमंग उठी, सत्साधना शुरू कर दी। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने लीला की, संत ने उसे कहा बेटा अब तू आगे उपदेश दिया करिए, और तुझे आदेश दे दिया मैंने। उधर से परमात्मा घूमने के लिए बहाना करके निकल गए जंगल में, वन में, वापस नहीं आए। खोजबीन की, देखा कोई व्यक्ति किसी हिंसक पशुओं ने खा रखा, ऐसा स्थिति कर दी। उन चेलों ने सोचा गुरुजी को तो किसी ने खा लिया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि वो परमात्मा थे, वो तो चले गए थे। अब 10-12 वर्ष के बाद कहीं पर समागम था कोई, जैसे कई प्रकार के संत इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मेला होता है कुंभ का, वहां पर वो कबीर परमेश्वर का अनुयायी भी चला गया। उधर से उसका पहले वाले गुरु का चेला, वो सिद्ध जो सिद्धि प्राप्ति के लिए निकला था, वो भी आ गया। 12 वर्ष के बाद दोनों मिले, गले से मिले, बड़ी खुशी हुई। और फिर दरिया के किनारे बैठे थे, चर्चा चली कि बोलो भाई क्या उपलब्धि हुई 12 वर्ष के बाद। अब जो परमात्मा कबीर जी से परिचित हो गया था, उसने कहा भी मुझे तो सब कुछ मिल गया। अब वो जो सिद्ध पुरुष सिद्धि ही करने की चेष्टा में था, उसने पूछा कोई सिद्धि बता क्या प्राप्त हुई तुझे। अब वो कबीर पंथी ने कहा कि भाई सिद्धियां की हमें जरूरत को नहीं, हमें परमात्मा मिल गए। परमात्मा पाना था हमने इन सिद्धियों से, ये तो खिलौने हैं, बच्चे खेलते हैं इनके साथ। तो वो कहता है सिद्ध जो उसका गुरु भाई था, सिद्ध पुरुष का चेला, अब भी सिद्धि वाले डले ढो रहा था, उसने कहा तू अच्छा आदमी है, अरे सिद्धि मैं बताऊं मुझे क्या उपलब्धि हुई, अभी दिखाता हूं आपको। दरिया के ऊपर के ऐसे चल पड़ा जैसे थल पर चलते हैं, और परले पार चला गया, वापस फिर आ गया, देखा मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली। अब उसने माथे बात मारा कबीर पंथी ने, बोला 12 वर्ष में तेने दो अन्य की कमाई करी, एक अन्य में जो नौका वाला परली साइड में छोड़ देता है, एक अन्य में उल्टा ले आता है, सारे 12 वर्ष में तेने दो अन्य की कमाई करी, ये टट्टू साधना प्राप्त हुई, क्या उपलब्धि हुई तेरी। इस बात से वो बड़ा प्रभावित हुआ, फिर बैठ गया उसके पास। अक्सर मुझे यू के डले डोए मने, ये तो नौकाले में बैठ के कोई चला जा ढाई अन्य में मजदूरी कर ले, इसका अच्छा किता। फिर उसको सारा ज्ञान जो परमेश्वर से प्राप्त था, अब उस भगत ने नूना बेरा था, वो भगवान थे, वो तो गुरु एक संत मानते थे, वो सारा ज्ञान जो परमात्मा से प्राप्त हुआ था अपने गुरु भाई को सुनाया, बड़ा प्रभावित हुआ। अपने आत्मा जिसने भगवान पाना है वो बकवाद नहीं करा करते, वो तुरंत समर्पित हो जाते हैं, उसके प्रेरणा जबरदस्त जागी के अब मेरा कल्याण क्यों कर होगा, मंदिर डड़ा डो लिए, सारा जीवन खो दिया, कुछ कृपा करो मेरा भी उद्धार करवा दो, महापुरुष से मुझे नाम दिला दो। अब फिर वो भगत रोने लग गया जो कबीर पंथी था, तब वो सिद्ध जो था सिद्ध वो कहने लगा आप क्यों रो रहे हो, कहने लगा वो कबीर पंथी कहता मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपका कल्याण संभव नहीं। भैया ऐसी क्या बात होगी, मेरा कल्याण संभव क्यों नहीं। अब वो कबीर पंथी कहता है कि भाई बात सुन, तू और मैं एक गुरु के चेले थे, एक गुरु के शिष्य थे, तू सीनियर था मैं जूनियर था, वहां सिद्ध के वहां कहा ऐसा ही है। तो भाई वो गुरुदेव तो शरीर छोड़ गए मेरे वाले, जिनसे मुझे ये मार्ग मिला, अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता। तो उसने कहा भी देखो गुरुजी चलो शरीर तो छोड़ गए होंगे, पर किसी को आदेश दे गए होंगे, मुझसे ले लूंगा नाम। तो कबीर पंथी कहता है कि भाई उससे नाम तू ले नहीं सकता, क्योंकि गुरु को परमात्मा तुल मानना पड़ता है, और तू उसको गुरु भी नहीं स्वीकार कर सकता। अब वो सिद्ध पुरुष कहता है कि बात सुन भाई, मैं निकला हूं भगवान पाने के लिए और मुझे आप किसी से दिला दो ये ना, मैं उसको सिर पर रखूंगा, मुझे परमात्मा चाहिए। तब उसने बताया किसने, कबीर पंथी ने, कि इस दास को आदेश देगे वह और आप मुझे, क्योंकि आप मेरे से सीनियर थे वहां पर आश्रम में, या जिन जूनियर सीनियर की आग सारा लाग रही है या भी एक बेड़ी है इस काल की, तो भगत तो एक सत्र में होने चाहिए, ऊंच नीच ना हो, पहला पीछा कुछ नहीं होता। एक पिता की संतान है, एक बड़ा बेटा है, एक 15 साल छोटा है, तो सह तो एक के पिता के, सह तो भाई हुए, बहन भाई है, तो ऐसे हो आप। तो उसने कहा कि आप मेरे से नाम ले भी लोगे तो आपका भाव बने नहीं मेरे अंदर, क्योंकि आप मेरे से सीनियर थे। चरण पकड़ दिए, इन्हें बोला रे इस तो बढ़िया बात है, और कहां होगी, मेरा खुद जो ना गुरु भाई, मेरा गुरु, आज से मैं आपका दास, आप मेरे भगवान, मुझे नाम दो। तो नाम दे दिया, दीक्षा दी और दोनों का अपना खूब जैसी साधना की, खूब बढ़िया कल्याण मार्ग पर चले। अब क्या बताते हैं परमात्मा, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिस्वे 20। अब जिनके पास सिद्धि हो जाती है वो प्रभु पाक जाते हैं, सैकड़ों आदमी प्रशंसक हो जाते हैं, उस महाराज ने यूं कर दिया, उस महाराज ने यूं कर दिया, उसका नाश कर दिया, वहां बैठे नाग लगा दी, यही से काम करा करते। अब क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे 20। अब प्रभु पाक गया, लाखों लोग हजारों लोग प्रशंसक हो गए, वो फिर भगवान बन जाता है। तो वो भगवान बन गया तो भगवान तो एक कह रहेगा, दूसरा बन ही नहीं सकता, तो परमात्मा दूर हो जाता है। कहते हैं ये सिद्धियां जो आपके अंदर मान बड़ाई पैदा कर देती हैं, भगवान से दूर कर देती है, हंस को बिछोड़ देती है, बिछुड़ जाता भगवान से, दूर चला जाता। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे 20। विश्वे 20 माने कति पक्कम पक्का, 100% जीव का नाश करती है, भगवान से दूर कर देती है सिद्धियां की जो चौधर है। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन व्यक्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर धावे, एक सिद्धि सब गठ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि पर लोक के बासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न ला जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचारे, एक सिद्धि पांचों तत नीरम, एक सिद्धि हो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि ब्रह्मंड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सोहम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना मन चावे, सोहंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटराणी, सतलोक की कहूं निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बता है कि एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, कि मन के अंदर आपने के सोच रखा है। तो हम कहते हैं ये सिद्धियां हमें इनकी आवश्यकता नहीं। एक सिद्धि निस्वासर जाग गए, एक सिद्धि सेवक हो आ गए, एक सिद्धि दिन रात जागने की प्राप्त हो जाती है। और हम भक्ति अध्यात्म ज्ञान से इतने दूर हैं, अध्यात्म ज्ञानहीन है हम जरा से भी किसी संत या भक्त में ऊट पटांग सा देख लेते हैं, हम उसके साथ चिपक जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। एक गांव है खेड़ी दमकन गोहाना के पास, दास के वहां मामा जी हैं। तो वहां देखा, वहां कथा सुनी उनकी कि एक डेरा बना हुआ गीसा पंथियों का। गीसा आदरणीय गीसा साहेब जी को परमेश्वर कबीर देव जी आकर मिले थे और उन्होंने फिर परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लिपिबद्ध भी किया है, कुछ वाणी भी बोली है। उन्हीं का एक शिष्य था तो उन्होंने उस अपने आदरणीय गीसा दास साहिब जी की शिष्यता हो गया, लेकिन वचन नहीं माना उसने, अपने हिसाब से हठयोग करता रहा। नेकी राम नाम था उनका, नेकी राम जी। उसने सिद्धि प्राप्त कर ली हठयोग करके, दिन रात सोए नहीं। वो उस गांव में आकर बैठ गया बनी में और साधु रूप में एक लंगोट बांध रहा, बस नो अवधूत रूप में बैठा।